ओम शांति। आज की मुरली है 2270 आत्मिक पावर की परख। तो आज बाबा ने काफी अलग अलग पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन मेन जो है कि हम कैसे परख करें कि हमारी पावर बढ़ती जा रही है या नहीं, या हमारी वो लाइट जो बल्ब वो पावरफुल है या नहीं। उसके अलावा बाबा ने अलग अलग युक्तियां बताई हैं कि कैसे हम माया से बच सकते हैं और कैसे व्यर्थ संकल्प जो हमारे पुरुषार्थ में विशेष रुकावट है उससे हम कैसे उसको कैसे खत्म कर सकते हैं और सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। सफलता पाने के लिए दो चीजें बाबा ने आज बताई, और साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए क्या करना होगा। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो बाबा ने शुरू में जब आते ही कहा कि आज हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले मुरली में भी आया था प्रोजेक्टर के बारे में। क्या आया था वो? हाँ, क्योंकि उस समय अंधेरा, क्योंकि अभी जैसे प्रोजेक्टर जब शुरू तो बहुत पहले हो गए थे, 18 मतलब बहुत पहले से चल रहा है ये, लेकिन जो कमर्शियल हुए वो 1950 लेट 50s में और 60 के शुरू में। और उस समय क्या होता था कि जब तक अंधेरा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा। तो बाबा कहते थे कि ऐसा तो कुछ फायदा ही नहीं है, नहीं तो फिर सब सो ही जाएंगे। लेकिन अब जो है, अब तो इतने पावरफुल आ गए हैं कि लाइट कितनी भी तेज हो लेकिन वो प्रोजेक्टर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो प्रोजेक्टर, बाबा ने कहा कि प्रोजेक्टर शो, जैसे आप भी रखते हो प्रोजेक्टर शो, वैसे ही बाबा हर एक के नैन प्रोजेक्टर का काम करें। लेकिन जितना, फिर बाबा ने कंपैरिजन किया कि जितना पावरफुल प्रोजेक्टर होगा उतना ही दृश्य क्लियर होगा। प्रोजेक्टर जितना पावरफुल दृश्य है उतना क्लियर, उसके लिए जैसे अंधेरा भी करने की जरूरत नहीं और बिल्कुल क्लियर सब कुछ होगा। वैसे ही बाबा ने कहा कि आपके दिव्य नेत्र भी बिल्कुल क्लियर हो और रूहानियत से संपूर्ण होंगे तो देखने वालों को क्या दिखेगा, उनको साक्षात्कार होंगे बाप दादा और सृष्टि का। और सृष्टि में भी बाबा ने बोला कि स्थूल सूक्ष्म और मूल तीनों लोक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। हाँ, 3D तो नहीं कहेंगे इसको, 3D थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन तीनों लोकों का है ना वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे प्रोजेक्टर में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि कुछ है और उल्टा दिखाई दे रहा है। शुरू में उल्टा दिखाई देता था, जो पिक्चर है उसका बिल्कुल रिवर्स, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है प्रोजेक्टर में। तो बाबा ने कहा कि ऐसा ही प्रोजेक्टर तुम्हें भी बनना है। जैसे टीवी में उल्टा दिखता है तो उसको उल्टा कर दो, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और उसके लिए विशेष क्या चाहिए प्रोजेक्टर में भी, जो मेन क्वालिटी का है कि लाइट, जितनी पावरफुल लाइट होगी उतना ही पावरफुल प्रोजेक्टर और उतनी ही उसकी कीमत ज्यादा होगी। तो बाबा ने कहा कि अभी आपका जो लाइट है वो पावरफुल है या नहीं वो देखना है। तो किस आधार पर बाबा हमारी लाइट को देखते हैं, या हमारा बल्ब जग रहा है या नहीं जग रहा, या कितनी पावर से जग रहा है वो देखते हैं, तो उसका मेन आधार क्या है। तो बाबा ने ये प्रश्न किया कि जो जानते हैं कि हमारी लाइट कितनी पावरफुल है, या हमारा जो बल्ब है वो कितना पावरफुल है, या कितनी परसेंटेज है उसमें लाइट, वो हाथ उठाए, कितने वाट का है तो वो हाथ उठाए। तो कईयों ने हाथ उठाया होगा। तो बाबा ने पूछा कि इसका मेन आधार क्या है अपनी लाइट देखने का, कि हम कितने पावरफुल हैं, इसका मेन आधार क्या है, क्या हो सकता है, क्या क्या आधार? पवित्रता, और मतलब इसको परखने का वो क्या है, जैसे हाँ यंत्र, हाँ प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है। लेकिन बाबा का प्रश्न यही था कि उसको देखने परखने का आधार, मतलब उसको कैसे परख सकते हैं, सफलता कितनी मिल रही है ना। किसी ने आंसर दिया कि चार्ट से, तो बाबा ने कहा वो तो टोटल हो गया, वो तो सब कुछ आ गया उसमें, लेकिन परखने का हो गया कि तीन चीजें फिर बाबा ने कही, जैसे सफलता भी कि हमारा पुरुषार्थ कितना, पुरुषार्थ का मार्ग और मंजिल कितनी क्लियर है, और दूसरा भविष्य का स्टेटस वो कितना क्लियर है, और तीसरा जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको पुरुषार्थ का मार्ग और मंजिल कितनी क्लियर है। तो बाबा ने कहा ये देखने का, परखने का आधार है कि हमारी लाइट कितनी पावरफुल है। जिनकी हम, फिर बाबा ने कहा कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं अगर उनको पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर नहीं हो रहा, या उनको मंजिल नहीं समझ आ रही, या वो सहज रीति से नहीं चल पा रहे, चलते हैं फिर थक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइट की परसेंटेज कम है। और फिर बाबा ने कहा कि लाइट जो है उसका विशेष गुण क्या होता है, अंधकार को खत्म करना, किसी भी चीज को स्पष्ट करना। जैसे अंधकार में या अंधेरा होता है तो कोई चीज साफ नहीं दिखाई देती, जो जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती। कोई भी हम डिटेल में कोई कार्य या महीन कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत तेज लाइट चाहिए होती है, तभी वो कार्य अच्छे से हो पाता है। तो उसके बाद बाबा ने कहा, यहाँ के बाद क्या था,
करो,
हाँ
अब अपना बल्ब
हाँ वो हो गया बल्ब के पावर के बाद। हाँ पुरुषार्थ, तीनों तीनों स्पष्ट होगी कि अपना पुरुषार्थ और जो दूसरे हैं उनका भी, और भविष्य का जो स्टेटस है हमारा वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ वो तो उसके बाद विनाश के बाद।
दो फरवरी 70 की है ना लाइट की परसेंटेज
हाँ
बढ़ाना।
एक सेकेंड में। जिसकी लाइट पावरफुल होती है वो ना खुद उलझता है और ना दूसरों को उलझने देता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आप मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, बाबा ने कहा कि हर जगह पर या कदम कदम पर ठोकर हम खाते हैं, तो जो हमारी रचना होगी वो भी फिर वैसी ही निकलेगी। फिर बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे बीज पावरफुल होता है, तो बीज पावरफुल होता है तो फिर फल भी वैसा ही निकलता है, लेकिन अगर बीज कमजोर है तो फिर फल और फूल ऐसे निकलेंगे जिन जो स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। तो बाबा ने फिर कहा कि ऐसे इसीलिए हमें अब अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाना है। और फिर बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन आपके मस्तक से और आपके चेहरे से ऐसी सेवा हो जैसे प्रोजेक्टर शो काम करता है। और ये कहा कि अभी साक्षात्कार मुहूर्त बनना है कि कोई भी देखे उनको बुद्धि योग से हमारे नैनों से साक्षात्कार हो। लेकिन और उसके बाद फिर हमारी नैन प्रोजेक्टर का काम करें और मस्तक सदा चमकता रहे, नैन प्रोजेक्टर का काम करें और मस्तक सदा चमकता रहे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए। हाँ वो पहले हो गया कि तीनों लोग दिखाई दें, फिर ये प्रोजेक्टर का काम करें नैन हमारा। हाँ इससे पहले भी कुछ है कि साक्षात्कार मुहूर्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें साक्षी, उसके लिए हमें साक्षी रहना होगा। और फिर बाबा ने कहा कि जो होली के बाद एक त्योहार मनाते हैं सांग, वो कहीं मिला तो नहीं, स्वांग एक है वही होगा सांग, हाँ स्वांग। तो उसमें क्या करते हैं कि जो स्वांग, सांग का मतलब वैसे है कि परिपूर्ण, पूरा परफेक्ट, तो उसमें कहते हैं कि देवताओं के चित्र बनाते हैं और मस्तक पे लाइट लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो कब का यादगार है, वो अभी का यादगार है। और फिर बाबा ने कहा कि विनाश के समय ये लाइट बहुत हेल्प करेगी, ये लाइट बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो तमोगुणी वृत्ति वाले लोग आएंगे उनको सिर्फ लाइट दिखेगी, ये शरीर नहीं दिखेगा। तो जब शरीर दिखेगा ही नहीं तो फिर उनकी तमोगुणी वृत्ति भी या वो हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसी परीक्षा भी होनी है, ऐसी परीक्षाएं भी आनी है और इसी प्रकार की परिस्थितियां भी आनी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। जितनी हमारी लाइट पावरफुल होगी, जितने हम पावरफुल होंगे, उतना ही हम वो परीक्षाएं आसानी से पास कर सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि इस ग्रुप को देखा, और फिर बाबा ने कहा कि हंसी में एक नाम रखा। इस ग्रुप को देखकर हंसी में एक नाम रखा। वतन में चिटचैट चल रही थी तो किसी ने कहा ये ग्रुप कौन है, बाकी निमित्त जो है वो हेड्स हैं और हम क्या है, लेग्स हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, हेड्स लेग्स नहीं, लेकिन वो हेड्स हैं और आप हैं हैंडल, और हैंडल के बिना हेड्स कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे साइकिल में होता है ना, या गाड़ी में, बाइक में, कि हैंडल ना हो तो फिर कुछ भी कार्य नहीं होगा। इधर उधर मोड़ना हो तो हैंडल ही काम आता है। तो बाबा ने अच्छा सर्कस बिना हैंडल तो हैंडल किसी भी चीज को करने के लिए, तो बाबा ने कहा कि देखो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हैंडल के बिना हेड्स भी कुछ कार्य नहीं कर सकते। हाँ सर्कस, क्योंकि कुछ सीरियस वहां जिम्मेवारी नहीं है, वहां सिर्फ इंजॉय करने का, या तो इसलिए हैंडल बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि जो हैंडल, जब सबसे पहले कोई आता है तो हैंडल ही हैंडल करते हैं, उनको हैंडल ही हैंडल करते हैं, और हैंडल की अगर हैंडलिंग पावर अच्छी नहीं होगी तो सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा ने फिर कहा कि जो हैंडल हैं उनको हैंडल बन के ही रहना है, क्योंकि जो बाबा के राइट हैंड भी हैं और लेफ्ट हैंड भी हैं, और राइट हैंड में बहुत पावर होती है, पावर तो होती है लेकिन राइट हैंड फिर भी राइट हैंड ही होता है, वो हेड नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि इसलिए राइट हैंड बन के रहना है, और आप यही इस ग्रुप में यही सीखने आए हो कि राइट हैंड बनकर कैसे रहना है, हाँ हेड को हैंडल नहीं करना है। बाबा ने कहा कि हैंडल तो बने लेकिन जिम्मेवारी भी है, और बिना हैंडल के हेड काम भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हेड को हैंडल नहीं करना, हाँ नहीं तो हेडेक हो जाएगा। हेड हाँ हेड का हैंड बन के रहना है, हैंडल नहीं करना, नहीं तो हेडेक हो जाएगा। और फिर बाबा ने कहा कि एक एक बहुत कमाल कर सकता है। सफलता के लिए दो बातें बताई, फिर सफलता के लिए बहुत बार अलग अलग मुरलियों में हमने यहां भी काफी डिस्कस किया कि सफलता के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन जो आज का पॉइंट है वो देखा जाए तो बहुत जरूरी है। दो चीजों में वो सब कुछ आ जाता है, नशा और निशाना। क्योंकि कुछ भी कार्य करते हुए अगर नशा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में नशा तो चाहिए इंसान को, क्योंकि नशे के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो अलग अलग प्रकार के नशे हैं दुनिया में, वो क्या क्या हैं? साधना के लिए
भांग,
अच्छा भांग का नशा हो गया, और क्या नशा है? पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। किस किस प्रकार के नशे हैं? पढ़ाई का नशा है कईयों को, स्टेटस का, हाँ नाम का नशा, पावर का नशा,
अपने कुल का नशा होता है,
कुल का नशा होता है, जाति का नशा होता है, पैसे का नशा, सबसे बड़ा नशा तो पैसे का ही नशा है। और पावर और पैसा दो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, बाहर की रीति से, सौंदर्य का नशा है ना, शरीर, हाँ ये भी एक नशा है, शरीर की ताकत का नशा, पोजीशन का नशा, अपनी सेवा का, यहाँ वो तो यहाँ की बात आ गई कि सेवा का नशा या अपने पुरुषार्थ का नशा, और बाहर की दुनिया में भी और भी बहुत, जैसे खेल का नशा होता है कईयों को, जीत का नशा, ये भी नशा बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसको जीत का नशा होगा उसको जब हार मिलेगी तो वो फिर बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएगा, बिल्कुल ही डिप्रेशन में भी चला जाता है। राजनीति का नशा, टीवी देखने का नशा, हाँ ये भी एक प्रकार का नशा ही है, और खाने का नशा एडिक्शन है ना, नशे को हम बोलते हैं एडिक्शन, और उसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो बर्निंग डिजायर बोलते हैं उसको, इंटॉक्सिकेशन, ये थोड़े नेगेटिव वर्ड्स है। और किस प्रकार का नशा, और भी बहुत नशे हैं वैसे दुनिया में, लेकिन बाबा जो कहते हैं वो है रूहानी नशा, धर्म का नशा, सत्ता का नशा, कि हम ही सही हैं, और जो सुपीरियर होते हैं दूसरों से, तो उनको ये लगता है कि हम इनसे ऊंचे हैं, तो ये भी एक रीति से नशा ही है। हाँ, व्यर्थ बातों का नशा, क्योंकि जब मेरे को अभी तक याद है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहां पर सिर्फ दो या तीन चीजें होती हैं बात करने को, और कुछ भी नहीं, और वो इतना नशा है कि उसके रात के 2-3 बज जाते हैं बात करने में, और कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे, लेकिन फिर भी करते हैं। एक तो मूवीज के बारे में, अगर हम दिल्ली साइड जाएं, हाँ, सिर्फ जो नशा देखा जाए तो बाहर की रीति से भी या यहाँ भी, कि हमारा तो रूहानी नशा जो है, पढ़ाई का नशा, सेवा का नशा, अपने आप को आगे बढ़ाने का नशा, खुद को जानने का नशा, कुछ नई बातें सीखने का नशा, तो ये सब जो नशे हैं वही हमें या हमारे लिए जरूरी है, विशेषताओं का नशा। तो और नशे के बारे में काफी चीजें हो सकती हैं, नशा और फिर बाबा ने कहा निशाना। जब नशा होता है और निशाना होता है, तो जब हम किसी को समझाते हैं तो वो भी तीर लगता है, बाबा ने कहा कि वो भी मर्जीवा बन जाते हैं, लेकिन अगर नशा उतर जाता है या फिर निशाना कम हो जाता है या निशाना घट जाता है, तो फिर सेवा में वो सफलता नहीं होती जो होनी चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया निशानेबाज का, जैसे निशानेबाज होता है तो वो एक ही निशाने में निशाने पे तीर लगा देता है, लेकिन जो अभी नए नए होते हैं, जो इतने धुरंधर नहीं होते, जो इतने परफेक्ट नहीं होते इस चीज में, तो वो फिर उनको काफी सारे निशाने 3-4 बार मिस होता है, फिर निशाना लगता है। तो यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जितना नशा ठीक होगा उतना निशाना सही लगेगा। और हाँ, कई निशाने जो है, निशाना मतलब क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है, मतलब हमें जब क्लियर हो कि हमें ये करना है, तो उसमें कुछ भी चीजें आएंगी, तो उसको हम जैसे व्यर्थ है या कुछ भी है या डिस्ट्रैक्शंस हैं अलग अलग, तो हम उनसे थोड़ा दूर रह पाएंगे। लेकिन अगर निशाना नहीं है या कुछ लक्ष्य नहीं है, चाहे नशा कितना भी हो, जैसे कई लोगों को नशा है कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है कि वो पैसे को कैसे किस रीति यूज करना है, तो पैसा तो कमा लिया लेकिन उसके बाद क्या करें, क्योंकि कुछ निशाना नहीं था। तो ऐसे ही हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो निशाना नहीं है कि हमें उसको किस रीति से यूज करना है, क्योंकि जो पावर्स हमें मिल रही है, जैसे बाहर की दुनिया में भी कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति जो है बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हमें वो यूज करनी नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं वो खत्म भी हो जाएगी, और उतनी वो पवित्रता का बल नहीं मिलेगा। हम ब्रह्मचारी तो रहेंगे, लेकिन वो फिर उसका बल जो है, पवित्रता का बल, वो हाँ स्व परिवर्तन में, सेवा में हम उसमें लगाएंगे तो उसका बल भी मिलेगा। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि हाँ मर्जीवा वो हो गया कि नशा जितना रहेगा और निशाना रहेगा तो फिर दूसरे भी मर्जीवा बनेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। बाबा ने कहा कि सर्विस तो करते हैं, लेकिन अब सर्विस में क्या विशेषता लानी है, और सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन सर्विस में विशेषता ये लानी है कि जो सर्विसेबल होते हैं उनका हर समय और हर संकल्प सेवा प्रति होता है। हाँ, वो आगे है रेस्ट वाला, तो सेवा प्रति होता है, उनका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा, या वो स्व की सेवा प्रति हो सकता है या औरों की सेवा के प्रति हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कि विशेष पुरुषार्थ में कुछ विघ्न आते हैं जिसके कारण हम जो बनना चाहते हैं या संपूर्ण बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। वो विघ्न, मुख्य विघ्न बाबा ने कहा कि वो क्या है, मुख्य विघ्न पुरुषार्थ में स्वभाव संस्कार मैपन व्यर्थ। बाबा ने आज कहा कि व्यर्थ संकल्प है और व्यर्थ संकल्प को दूर करने के लिए क्या करना होगा, समर्थ संकल्प, और उसके लिए क्या करना होगा, मुरली पढ़नी होगी रोज रोज। और बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करना,
एक सेकंड
भी बिल्कुल भी। बाबा ने आज स्पेशल ये समझाया कि एक एक तो कभी अंदर की वह बाहर की रेस्ट ना हो व्यर्थ संकल्पों से, क्योंकि जब भी हम रेस्ट लेते हैं या थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा आराम कर लेते हैं या ज्ञान के चिंतन से थोड़ा सा दूर होते हैं तो तभी व्यर्थ शुरू होता है। तो अगर रेस्ट नहीं लेंगे, और बाबा ने कहा कि अगर रेस्ट नहीं में नहीं होंगे तो फिर वेस्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं उसके बाद लगता है कि हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके कारण फिर दोबारा से और अगला जो एक दो घंटे और दोबारा से और ज्यादा वेस्ट जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को गेस्ट भी समझो, जब अपने आप को गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो समय वेस्ट नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि चाहे संकल्प और चाहे समय, उसको सफल करने का यही सहज तरीका है। तो सहज तरीका है कि एक सेकंड भी हम रेस्ट नहीं करेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि अच्छा अब समाप्ति के समय देखेंगे, उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे। तो अभी नहीं, अच्छा बाबा ने उसके बाद ये कहा कि अच्छा अब समाप्ति के समय देखेंगे कि हमारा जो आपका बल्ब है वो कितना पावरफुल बना है, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो तो सबको पता ही है कि वो एक सेकंड का ही है। उसी समय जो हमारी स्थिति, वो अंतिम विनाश के समय या जो भी होगा उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, तो बाबा ने कहा कि उस समय देखेंगे कि अभी तो हम कितना भी कहें कि बहुत पावरफुल हम बने हैं या हमें लगे भी कि बहुत पावर है, हम हमारी लाइट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हमारा पुरुषार्थ का क्लियर है, भविष्य का स्टेटस भी क्लियर है और दूसरों की जो हम सेवा करते हैं वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है और जो हमारा, हमने कितनी मेहनत की या हमने कितना पुरुषार्थ किया, उसका रिजल्ट तो देखने में आएगा कि अंत के समय में हम कितने पावरफुल रहे। और फिर बाबा ने कहा कि और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के सामने कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि जहां पावर होती है या जहां लाइट होती है, जहां प्रकाश होता है, तो वहां पर कोई भी कुछ नहीं करता। अंधेरे में ही या जंगली जानवर भी जैसे होते हैं तो क्या है कि वो आग लगा देते हैं आसपास, जो मनुष्य वहां रहते हैं या तो उसके आसपास वो वार करने या अटैक करने नहीं आते। तो उसी रीति से जितना हम अवेयर रहेंगे, जितना लाइट होगी, उतना ही फिर माया से भी हम बच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि सर्विसेबल हो लेकिन अब पावरफुल बनो, सर्विसेबल हो लेकिन अब पावरफुल बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। और फिर बाबा ने कहा कि विशेष ठप्पा जो हमें लगाना है वो क्या है, एक्यूरेट का, कि तीनों मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में हम एकदम परफेक्ट रहें, एक्यूरेट रहें। हाँ, बीच में एक पॉइंट रह गया कि फरमान बरदार है जो हर एक फरमान को फॉलो करे, हर एक फरमान को फॉलो करे, और मुख्य फरमान हमारा क्या है, सदा ही याद की यात्रा में रहना। अभी थोड़े समय पहले तीन दिन पहले वरदान में भी था ये सूक्ष्म फरमान और स्थूल फरमान। जब तक सूक्ष्म फरमान को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक स्थूल फरमान को हम फॉलो नहीं कर सकते। और मुख्य सूक्ष्म फरमान है निरंतर याद में रहना, और दूसरा मनसा वाचा कर्मणा सदा पवित्र रहना। और तो यही सूक्ष्म फरमान है।
और क्या रह गया?
और कुछ पॉइंट रह गया? और लाइट के लिए जो बाबा ने कहा कि जैसे हमारे लाइट कितनी पावरफुल है या उसकी परसेंटेज कितनी है, अगर जैसे हम नॉर्मल देखते हैं जो भी लाइट होती है, जैसे पहले शुरू में जब बल्ब आया, जब उसका आविष्कार हुआ, तो जितनी एनर्जी वो लेता था उसका सिर्फ 2-3% कन्वर्ट हो पाता था, तो बाकी सब वेस्ट जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो साइंस ने तरक्की की उसके बाद अब तो बहुत कम, 50s जो LCD नहीं, जो CFL, उसमें शायद 50% के आसपास कन्वर्ट होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। और जो अभी तो LED शुरू हो गए हैं, LED में तो बहुत कम वेस्ट होता है। तो यही है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम जो योग भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका कन्वर्ट कितना हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? कि हमारे जो संस्कार है या हमारा जो परिवर्तन स्वयं का परिवर्तन हो रहा है या नहीं, क्योंकि बाहर के लोग भी यही देखते हैं। उनको हम जितना भी समझा लें, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल बिहेवियर है उनसे, या जिस तरीके से हम उनसे बात करते हैं, तो उनको भी वही चीज अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हम लाइट को देखने का तो यही तरीका है कि हम ये भी देखें कि हम हमारे जो स्वभाव हैं या हमारा जो पुराने स्वभाव संस्कार थे वो हमने कितने चेंज किए, जो हमारे में कमियां थी वो दिन प्रतिदिन हमारे में वो कम हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अभी तो ये मुरली खत्म हो गई। ओम शांति।
ओम शांति। इस मुरली में दो दो बातें हैं सारी, एक्टिव और एक्यूरेट, पावरफुल और सर्विसेबल। रेस्ट नहीं लेना, गेस्ट समझना। उसके बाद सर्विस में सफलता के लिए दो बातें, कौन सी?
नशा,
पूरा नशा, पूरा निशाना, एक हेड, दूसरा हैंडल। उसके बाद में साक्षात्कार, प्रोजेक्टर, और उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? साक्षी। साक्षात्कार कराना है तो पूर्ण साक्षी। साक्षात्कार बाबा ने नयन के लिए कहा, ये नयन जितने पावरफुल हो जाएंगे, इस नयनों में जितनी रूहानियत भर जाएगी उसी के अनुसार साक्षात्कार कर सकेंगे। फिर साक्षात्कार कौन सा? बाप दादा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत तीन लोक जो है उसका साक्षात्कार। उससे क्या हो जाएगा? स्वयं का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, भविष्य स्पष्ट हो जाएगा क्या बनने वाले हैं, और दूसरों का भी मार्ग सहज स्पष्ट हो जाएगा, तीनों चीजें उधर हो जाएगी। तो प्रश्न है नयनों में रूहानियत कैसे भर दे, ऐसा क्या करे? कार्य आज हमको आंखों पर करना है। चंद्रशेखर भाई जी, क्या करेंगे इन आंखों को कि जो इन आंखों में देखे और उसको साक्षात्कार हो जाए?
तीन पॉइंट है। पहली पॉइंट है हमारा नजर, जैसा बाबा ने बोला ना, निशा ने, बस एक बात के ऊपर ही टिके रहे।
हाँ,
कोई भी स्थूल कर्म करते हुए
भी बुद्धि याद उसको करे।
दूसरी बात है हम किसके कर्म कर रहे हैं, वो सदा स्मृति में
स्मृति में रहे कि किसका कार्य है ये। तीसरा
है कि हम कहाँ कार्य कर रहे हैं,
कहाँ कार्य, किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं।
तीनों चीज जब स्पष्ट होगा उसके आंखों में
रूहानियत आ जाएगी। ये तो हो गया मानसिक तल पर, आत्मिक तल पर, ये बताइए कि स्थूल आंखें जो है उससे क्या करे, क्या न करे, क्या करे जिससे इन आंखों में रूहानियत आ जाए। ये जो बताए तो राइट है, परंतु स्थूल स्थूल आंखें जितना काम है उतना ही देखे, और आंखों पर कार्य करना है। आज का होमवर्क जो है वो आंखों पर, इन आंखों को प्रोजेक्टर बनाना है। बाबा ने आंखें, नैन और मस्तक, ये दो चीजें कही है। इन आंखों से क्या करे और क्या न करे, आंखों में रूहानियत भर जाए, आंखों में पावर भर जाए, इतनी पावर उन आंखों में भर जाए कि जो भी इसे इन्हें देखे, जैसे वो साईं बाबा का दिखाते हैं ना, साईं बाबा वो पड़े हुए एक जगह, उधर से वो मुसलमान चांद आता है, उसकी घोड़ी जो होती है वो गुम हो जाती है रोशनी, तो वो ढूंढते आता है कहाँ है कहाँ है, और जब वो उसकी आंखों में देखता है तो क्या कहता है वो, अच्छा पहले कहता है आप मुसलमान हो, फिर वो गीता पढ़ने लगता है, अच्छा आप हिंदू हो, फिर वो उसकी आंखों में देखता है तो एक तरफ उसको मक्का दिखता है और एक तरफ राम और कृष्ण दिखते हैं, वो उसके चरणों में गिर जाता है, वो रहता है मुसलमान। पहले कहता है कि हाँ आप तो मुसलमान लग रहे हो, फिर जब वो गीता पढ़ने लगता है साईं बाबा तो कहता है अरे आप तो हिंदू हो, फिर साक्षात्कार करा जाए तो चुपचाप चुप हो जाता है। तो वो पावर कि जिससे आत्मा शांत हो जाए, उसको सृष्टि के जैसे कृष्ण का दिखाते हैं ना, कि उसने मुंह खोला और ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड तो संसार को कहा जाता है भक्ति में, यहाँ तो तीनों लोकों का, ब्रह्मांड का भी जो कि परम धाम है, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन और बाप दादा, ये चारों साक्षात्कार हमारे नयनों से हो जाए तो इन नयनों से क्या करे क्या न करे। दूसरों के गुणों को देखेंगे तो नयनों में रूहानियत आ जाएगी। एक आत्मिक दृष्टि देखना है तो देह आत्मा को ही देखना, देह को ना देखना। दो, तीसरा विशेषता गुण रहम दिल, तो एक अलग प्रकार का गुण है, आंख आंख से, स्थूल आंख से, ये जो फिजिकल आईज है, फिजिकल आईज से क्या देखना, फिजिकल आईज से क्या न देखना। चलो क्या न देखना ज्यादा आसान है, क्या न देखना, देह को नहीं देखना, देह की सुंदरता, कोई सुंदर है कोई असुंदर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई लंबा है कोई मोटा है, ये देखना, स्त्री देखना पुरुष देखना, ये जो है ना ये दैहिक दृष्टि है। तो दैहिक दृष्टि के जहां पर जितना परसेंटेज में त्याग होगा उतना ही उनमें उस आंखों में रूहानियत भरेगी। और कौन दूसरे क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं देखना है, हमें केवल जैसे कहा बाप को एक देखना है, बस एक ही तरफ नजर हो, पूर्ण निशाना पूर्ण नजर एक तरफ, उसको अलौकिक बना देना, जो देखना उसको लौकिक नहीं देखना, अलौकिक कर देना उसको, और अपने को ही देखना है, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है खुद को देखो और खुदा को देखो, बस स्वयं को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों ने क्या किया, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। और ज्यादा देखनी नहीं है तो और ज्यादा याद आएगी हाँ दूसरे की इसमें बादाम थोड़े ज्यादा लग रहे हैं खीर में, कहाँ से लाई ये सब्जी, तो नहीं लग रही है, कहाँ से मिली तो भोजन को भी देखो तो उसको ऐसी दृष्टि दो कि वो पावन हो जाए, बेहद की दृष्टि, बड़ी दृष्टि। और शक्ति रूप हो, इन नैनों में कोई भी आकर्षित ना कर पाए हमें, इस संसार का कोई व्यक्ति पदार्थ कोई भी आकर्षित ना कर पाए, कोई भी वस्तु आकर्षित ना कर पाए, और किसी में आंखें हमारी ना डूबे, बाबा की भाषा। और
अंदर की
दिव्यता आएगी, भावनाएं, ये भावनाएं और वो दूसरे तल पर है, स्थूल स्थूल समदृष्टि हो, समदृष्टि सबके लिए समदृष्टि, ऐसा नहीं ये पुराना ये नया ये छोटा ये बड़ा ये नया ये अभी अभी आया है ये सेवाधारी है ये समर्पित है, सब के प्रति समदृष्टि, सब आत्माएं हैं। और नयनों में ना आंख भी नहीं दिखाना, नहीं तो आंख से भी क्रोध होता है ना, ऐसे आंख ना दिखाना है और ना ही झुकाना है, सारा कुछ देखना, तीनों त्रिकालदर्शी, और एक आंख में शांति धाम, एक आंख में मुक्ति धाम, और वो दिखाई दे, और बाबा के चित्र देखना, स्लोगन देखना, चरित्र देखना, और एक ही विचित्र को देखना और किसी को ना देखना, वृत्ति नयन, नयनों में रूहानियत भर जाए। सबसे मुख्य पुरुषार्थ तो उसका एक ही है, आत्मिक दृष्टि, सबको आत्मा देखना, देह की तरफ दृष्टि ना जाए, देह की तरफ आकर्षण ना हो, देह की तरफ खींचे ना कोई, और ना ही दूसरे हमारी देह की तरफ आकर्षित हो। जैसे कहा ना, दूसरे देखेंगे तो केवल आत्मा दिखाइए, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई बल्ब होता है और बहुत तेज लाइट होती है तो आजू बाजू का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसी मुरली में उदाहरण दिया है कि लाइट जब होता है तो आसपास का कुछ नहीं दिखता है, वैसे ये लाइट इतनी पावरफुल हो कि ये देह किसी को दिखाई ना दे, नहीं तो हमारी देह, हम दूसरों की देह की तरफ आकर्षित नहीं है पर दूसरे हमारी देह की तरफ आकर्षित है। कोई आकर हमसे कह रहे है कि वाह बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही सुंदर दिखते हो, ये ड्रेस में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हो आप, अगर ऐसा कहे तो मतलब हमारी देह की तरफ आकर्षण हो गया है उनका, दूसरी दूसरे हमारी देह की तरफ भी आकर्षित ना हो, सेंट वो और ज्यादा आकर्षित करने के लिए दूसरों को, अगर बाप की सभा बाप के सिवा और भी कहीं आकर्षित हो तो उसको कहेंगे
बेवफा।
तो दृष्टि को पावन बनाना, शुद्ध बनाना, दृष्टि में दैहिक भाव को धीरे धीरे नष्ट करना, देह को देखने की पोस्टर देह रहते हैं उसमें लगे हुए, कोई भी वीडियो टीवी थोड़ा भी न्यूज भी देखो तो बीच में एडवर्टाइजमेंट्स, इसके लिए बाबा ने सब चीजों के लिए मना कर रखा है क्योंकि देह दिखता है उसमें, और हमारी इतना आत्मिक दृष्टि का भी अभ्यास नहीं है कि हमको केवल आत्मा ही दिखे, इसके लिए जो छोटा पौधा होता है ना उसको बहुत संभाल की जाती है, उसके सारा कुछ लगाया जाता है, एक बार वो बड़ा बन गया वट वृक्ष तो हाथी भी बांध दो उसको फिर कुछ नहीं होगा, परंतु जब तक वो इतना शक्तिशाली हो नहीं जाता है तब तक उसकी रक्षा करनी होती है सब तरफ से। तो ये जो साधक है, हमारी जो साधना है उसकी भी हमें बहुत रक्षा करनी होती है, इसके लिए सन्यासियों के नियम बहुत कड़े होते हैं, तो ये हम भी सब बेहद के सन्यासी है, हमारे भी नियम वैसे ही कड़े होने चाहिए, ये मीठा बंधन है, इस बंधन में स्वयं को बांध लो तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो माया का प्रभाव तो चारों ओर है, कोई कितना भी महारथी हो कभी भी माया आ सकती है नए रूप में, बहुरूपीय माया, कभी इधर से आएगी, कभी वहां से आएगी, कभी छत से आएगी, कभी खिड़की से आएगी, अगले संडे की मुरली में है, इधर से उधर से यहां से वहां से कहां कहां से आ जाए पता नहीं, पता ही नहीं चलता है उसका रूप क्या है, किधर से भी आ सकती है, माया महाठगनी हम जानी, जो हमने सोचा हमने जीत लिया है वो फिर उत्पन्न होगा, जो संस्कार खत्म हो चुका था वो न जाने कहां से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से राख से उत्पन्न हो जाएगा अपने रूप के साथ। इसके लिए सारे दिन भर इन नयनों में रूहानियत भरनी है, पवित्र भरना है, पवित्रीकरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, डिवाइनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द आईज, जो कुछ देखे उसमें आत्मिक दिखे, जो कुछ देखे वो विचित्र को देखे, अदृश्य को देखने का अभ्यास करना है, दृश्यमान जो कुछ है उनको कुछ नहीं देखना, इन स्थूल नेत्रों से कुछ नहीं देखना है, तीसरे नेत्र से सब कुछ देखना है, ये अभ्यास करना है, तो ये प्रोजेक्टर बन जाएंगे। ओम शांति।